नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू चालू वित्त वर्ष में 3,500 कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने ये जानकारी दी। कंपनी अपनी टीमों को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्तर पर अधिक ध्यान देने पर विचार कर रही है। सूत्रों में से एक के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा में अचानक उछाल के कारण बायजू ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय लोगों को अधिक काम पर रखा था, लेकिन अब मांग कम हो गई है, जिसके लिए कंपनी को बदलाव करने की जरूरत है। नाम उजागर न करने की शर्त पर एक सूत्र ने पीटीआई भाषा से कहा, फिलहाल कोई छटनी नहीं हुई है। कंपनी विभिन्न इकाइयों में मांग के मद्देनजर स्थिति का आकलन कर रही है। करीब 1,000 लोग पहले ही नोटिस पीरियड पर काम कर रहे हैं और एक अन्य 1,000 ने अपने प्रदर्शन सुधार मापदंडों को पूरा नहीं किया है। हालांकि आकलन अब भी किया जा रहा है। इस पूरी कवायद से 3,000 से 3,500 कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने जी एंटरटेनमेंट के प्रवर्तक पुनीत गोयंका की तरफ से बाजार नियामक सेबी के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर की अपील पर अपना फैसला बुधवार को सुरक्षित रख लिया। सेबी ने कंपनी के कोष को दूसरी जगह भेजने के आरोप में गोयंका को सूचीबद्ध कंपनियों में प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया। गोयंका ने इस आदेश के खिलाफ सेट में अपील की थी। न्यायाधिकरण ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखने के साथ ही कहा कि सेबी और गोयंका अगर लिखित रूप से अपना पक्ष रखना चाहें तो एक सप्ताह के भीतर ऐसा कर सकते हैं। सेबी ने 14 अगस्त को जारी अपने अंतरिम आदेश में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रवर्तकों गोयंका और सुभाष चंद्रा को इस कंपनी एवं अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक बनने या प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से प्रतिबंधित कर दिया था। सरकार ने बुधवार को कहा है कि कोयला मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा खदान जल संसाधनों के सतत इस्तेमाल से 9 राज्यों के 981 गांवों के 17.7 लाख लोगों को फायदा पहुंचा है। कोयला खनन कार्यों के दौरान खदान का पानी बड़ी मात्रा में खदान की हौदी में जमा हो जाता है। ये पानी कई सामुदायिक उद्देश्यों को पूरा करता है, जिसमें घरेलू तथा पेयजल की आपूर्ति, कृषि क्षेत्रों की सिंचाई, भूजल पुनः पूर्ति, धूल दमन और भारी मशीनरी की धुलाई जैसे विभिन्न औद्योगिक इस्तेमाल शामिल है। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में CPSE ने करीब 8,130 लाख घन मीटर खदान पानी छोड़ा, जिसमें से 40% घरेलू तथा सिंचाई उद्देश्यों जैसे सामुदायिक उपयोग के लिए आवंटित किया गया, 49% आंतरिक घरेलू तथा औद्योगिक जरूरतों के लिए और 6% भूजल पुनर्भरण पहल के लिए रखा गया। विमानन कंपनियों की वैश्विक संस्था IATA ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 3 अक्षरों वाले कोड नेम का आवंटन किया है। हवाई अड्डे की मुख्य परिचालन अधिकारी किरण जैन ने बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए DXN कोड नाम आवंटित किया है। दुनिया भर में करीब 300 एयरलाइन का प्रतिनिधित्व करने वाला IATA किसी हवाई अड्डे की विशिष्ट पहचान को सुनिश्चित करने के लिए 3 अक्षर का कोड नाम जारी करता है। इस कूटनाम से उड़ानों के परिचालन एवं मार्ग निर्धारण में सहूलियत होती है। नोएडा हवाई अड्डे के CEO क्रिस्टोफ शेलमैन ने कहा कि DXN का कूटनाम इस हवाई अड्डे की दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं नोएडा के साथ नजदीकी को परिलक्षित करता है। IATA से जुड़ी एयरलाइन दुनिया के कुल हवाई यातायात के करीब 83% हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के जेवर में यह हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। अपोलो अस्पताल ने पूर्वी क्षेत्र में अपनी स्वास्थ्य देखभाल क्षमता का विस्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में 325 बिस्तर के आंशिक रूप से निर्मित अस्पताल का अधिग्रहण किया। अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड ने फ्यूचर ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का 102 करोड़ रुपए के नगद सौदे में अधिग्रहण किया। अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस की पूर्ण स्वामित्व वाली असूचीबद्ध अनुषंगी कंपनी है। अपोलो अस्पताल की प्रबंध निदेशक सुनीता रेड्डी ने कहा कि ये देश भर में योजनाबद्ध क्षमता विस्तार का हिस्सा है और इससे क्षेत्र में और अधिक लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। अपोलो का ये कोलकाता क्षेत्र में दूसरा और पूर्वी क्षेत्र में 5वां अस्पताल है। नीति आयोग के सदस्य अरविंद वीरमानी ने व्यक्तिगत कर की तरह ही व्यवसाय कर की पूरी प्रणाली को सरल बनाने की वकालत की और कहा कि फेसलेस मूल्यांकन सभी मामलों में काम नहीं कर सकता। फेसलेस मूल्यांकन में अधिकारी और करदाता को आमने सामने आने की जरूरत नहीं होती। वीरमानी ने कहा कि वह बड़े निगमों से सुन रहे हैं कि फेसलेस मूल्यांकन का मतलब कभी कभी एक प्रकार की अज्ञानता हो सकता है, क्योंकि व्यवसाय को अपने हर खर्च के संबंध में निर्णय करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा, व्यवसायिक कराधान स्वाभाविक रूप से समस्याग्रस्त है, कभी कभी आपको इसे समझने की जरूरत होती है। वीरमानी ने कहा कि व्यवसाय के लिए व्यवसायिक कराधान का मतलब केवल कॉर्पोरेट कर नहीं है, इसका मतलब व्यक्तिगत कराधान के व्यावसायिक पहलू भी है। उन्होंने कहा, आप एक फेसलेस मूल्यांकन कर सकते हैं, ये 80% मामलों के लिए काम कर सकता है, लेकिन ये 10% के लिए अधिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।